ओम शांति। ब्राह्मणों की संस्कृति, ब्राह्मणों के धर्म कर्म, ब्राह्मणों की मर्यादाएं, परंपराएं संसार से बिल्कुल अलग हैं, यूनिक हैं। किसी भी देश की संस्कृति की पहचान वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, व्यवहारिकता कैसी है, बोल कैसा है, वो दिखाई देती है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि संस्कृति से ही देश की पहचान होती है। तो ऐसे ही इस ब्राह्मण कुल की संस्कृति न्यारी प्यारी है, विशेष है, संसार से बिल्कुल हटके है। और इस संस्कृति का निर्धारण किसी मनुष्य के द्वारा नहीं किया गया है, स्वयं सुप्रीम सत्ता, स्वयं परमात्मा के द्वारा ये संस्कृति निर्धारित की गई है। और इस संस्कृति का पोषण सारे संसार की आत्माओं को पोषित करता है। जैसे वृक्ष है, बीज है, उसमें सारी शक्ति होती है। तो बाबा कहते हैं तुम भी स्कल्प वृक्ष के मास्टर बीज रूप हो। जो भी हमारे संकल्प हैं, जो भी हमारी दृष्टि है, निरंतर हमारा जो एक एटीट्यूड बना रहता है, वृत्ति है, दृष्टिकोण, हमारे संकल्पों से प्रवाहित होने वाली तरंगे हैं, वो ना केवल संसार को प्रभावित करती हैं बल्कि प्रकृति को भी प्रभावित करती हैं। लेकिन इसकी महसूसता तुरंत नहीं आती है। लंबे समय का साधना काल बीत जाने के बाद स्वयं के जो ज्ञान चक्षु हैं वो पूरी तरह खुलने लगते हैं। ऊपर ऊपर से ज्ञान तो सुन लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ भी लेते हैं, लेकिन उसको स्वरूप में लाने में समय लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं इस मार्ग में तीन बातें चाहिए, धैर्यता, गंभीरता और समझ। कुछ दिन पहले मुरली में था ना, बहुत धैर्यता चाहिए। कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसकी सफलता तुरंत नहीं मिलती है। उस सफलता तक पहुंचने के लिए मार्ग में बहुत सारे विघ्न आते हैं, और बिना विघ्नों के अगर सफलता मिल भी जाती है तो उसमें इतना मज़ा भी नहीं आता है। जहाँ संघर्ष होता है, ऑब्स्टेकल आते हैं, वहाँ जब हम जीत अर्जित कर लेते हैं तो उसकी खुशी, उसका नशा ही अलग होता है। तो इस मार्ग में बहुत धैर्यता चाहिए। इसलिए बाबा कहते धीरज धर्मनुआ, सुख के दिन आएंगे नहीं, आगे हैं। क्योंकि हम गे गे के गीत तो कब से सुन रहे हैं, अगर उस गीत को उसी कालखंड में सुनेंगे जो पहले सुनाया गया था तो हमारी प्रगति नहीं होगी। फिर सबसे बड़ा सुख तो ब्राह्मण जीवन का सुख है। सुख सुख में रहना तो हमारा स्वभाव है, हमारे संस्कार हैं। भले बहुत सारी बातें प्रभावित करने की आती हैं, मन को हलचल में लाने की आती हैं, कई ऐसे जीवन में घटनाएं घटती हैं, लेकिन जो मूल स्वरूप है हमारा सुख में रहने का, जो देवता स्वरूप है, संपूर्ण सुखी, उसकी अनुभूति तो अभी है। जो बाबा ने आज की मूल्य में कहा डबल वर्षा, मुक्ति और जीवन मुक्ति, तो वो देवताई जीवन का अनुभव अब भी करना और इसी शरीर में करना है। और ये शरीर तो वास्तव में देवताओं से भी उत्तम शरीर है। ये भले बाबा कहते हैं कि प्रकृति के तत्व पतित हो गए हैं, ये शरीर भी पतित हो गया है, लेकिन जिस पर परमात्म दृष्टि पड़ी हो, परमात्मा की कृपा हुई हो, उसके वाइब्रेशन की, प्योर वाइब्रेशन की निरंतर बरसात होती हो, तो वो शरीर तो वास्तव में रियल में देवताओं से भी उत्तम शरीर होना चाहिए। इसलिए अपने शरीर के प्रति भी चिंतन चाहिए। केवल आत्मा के चिंतन से ही सुख नहीं मिलेगा, शरीर का चिंतन भी अनिवार्य है। और इस शरीर को उसी तरह उस पालना करनी है जिस तरह से भगवान चाहते हैं। बाबा कहते हैं अगर बार बार बीमार कोई होता है तो तुम्हारी अपनी गलती है। इसलिए शरीर को भी समझना है, शरीर हमारा कैसे चलता है, इसको क्या चाहिए, जितना चाहिए हम उतना दे रहे हैं या उससे ज़्यादा ही कुछ लाद रहे हैं इसके ऊपर, या सारी चेतना हमारी शरीर के इर्द गिर्द शरीर को श्रृंगारने में या मोटा ताज़ा दिखने में, वही तो नहीं हमारा चिंतन चल रहा है। क्योंकि हमारे अपने शरीर से हमें बहुत प्यार होता है। अगर किसी का थोड़ा सा भी स्वास्थ्य गिरता है तो अपने ऊपर पूरी दृष्टि जाती है कि मैं ऐसा ना हो जाऊं, और लोगों की नज़रें ही वही शरीर पर ही रहती हैं। तो इस शरीर को देवता ही संस्कृति में डालना है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, अन्न ही मन है। हम किस भाव से उस अन्न को स्वीकार करते हैं, क्या वो अन्न प्रभु प्रसाद के रूप में ले रहे हैं, क्या उस अन्न को जिस अनुपात में लेना चाहिए उसी अनुपात में ले रहे हैं, या स्वादवश, कर्मेंद्रियों के वश, कर्मेंद्रियों के रस के वश, जीवा रस उस अनुसार ले रहे हैं, तो वो अन्न हमारा विष का काम करेगा, अर्थात हम विकारों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। जितना मर्जी हम साधना करते रहे, जब तक हमें अपने भोजन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, बार बार प्योरिटी से हार खाते रहेंगे, अपवित्रता से हार खाते रहेंगे, प्योरिटी हमारी पुष्ट नहीं होगी। इसलिए जब भी हम भोजन मारते तो हमारा उसमें सात्विकता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, उस भोजन पर वास्तव में किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। जगदीश भाई जी की क्लास सुनते थे हम, जगदीश भाई जी खुद भोजन बनाते थे शुरू शुरू में, तो सुनाते थे अपनी क्लास में वो कि उनके भोजन पर किसी की दृष्टि पड़ गई, वो भोजन उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे ही हम ब्राह्मण भी भोजन करते हैं तो दूसरों की थाली पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। सामने वाला क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, अगर ये भी हमारी दृष्टि जाती है तो ये भी हमारी कमी कमजोरी है। या तो हमारी दृष्टि इतनी पवित्र हो, प्योर हो, उपराम हो, अनासक्त हो। तो बाबा कहते इस मार्ग में बहुत धैर्यता चाहिए, बहुत धैर्यता चाहिए, गंभीरता चाहिए। और धैर्यता और गंभीरता ये ब्राह्मणों के आभूषण है, इसमें टाइम लगता है। मैच्योरिटी, जितना हम ज्ञान में स्वयं को डुबो के रखेंगे उतना जीवन में गंभीरता स्वतः आती रहेगी। अगर हम ज्ञान से किनारा करके रखते हैं स्वयं को, संसार की चकाचौंध में अपने आप को लिप्त करके रखते हैं, संसार के समाचार में, संसारिक आकर्षणों में, संसारिक संबंधों में, तो हमारी चेतना संसार के आकर्षण में लिप्त रहेगी और वही ख्यालत चलेंगे, वैसी दृष्टि रहेगी, परिवर्तन नहीं होगा। केवल ऊपर से महसूस होगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, हल्का फुल्का, लेकिन एक जो मर्म स्पर्शी महसूसता होनी चाहिए अंदर से कि ब्राह्मणों की जो संस्कृति है उस संस्कृति का मैं कितना पालन कर रहा हूं। तो हम देखेंगे ब्राह्मणों की संस्कृति क्या है, या कहें साधकों की संस्कृति क्या है, क्योंकि हमारा साधना संसार की तरह नहीं है, हमारी साधना निरंतर साधना है, हमारा जीवन ही साधनामय जीवन है, एक दो घंटे वाला नहीं है। बाबा कहते हैं एक दो घंटे वाले योगी ने, निरंतर योगी, निरंतर सेवादारी ये अंतिम अवस्था है जो कि अब अभी हमको पहले से बना के रखनी है। ऐसे नहीं कि बाबा ने कि अंत में होगा, फिर वो संकल्प अंत तक ही चलता रहेगा और हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो कैसे हम ब्राह्मणों की संस्कृति के अनुरूप हम अपने जीवन को ढालें। साधकों की जो संस्कृति है वो हमारे अंग अंग में रच बस जाए, हमारे कर्मेंद्रियों में समा जाए, हमारी कर्मेंद्रियां बोले वो संस्कृति को, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे मंदिर में मूर्ति नहीं बोलती है, आज ही बाबा ने मुरली में कहा ना, देवताओं का चेहरा कैसे होता है, खुश मिजाज, तो मूर्ति बोलती है कहाँ। बाबा कहते तुम चलती फिरती चैतन्य मूर्तियां हो, तो वो हमारे चेहरे से वो सारा कुछ दिखाई दृष्टि के दृष्टिगोचर होना चाहिए। हमारे जीवन में जो बदलाव आ रहा है, हमारी दृष्टि में जो प्योरिटी है, और उसका अहम स्रोत है रोजाना की मुरली। जैसे कल भी सूरज भाई क्लास में बता रहे थे योग कैसे करना है, चिंतन वाला योग करना है। अगर बिना चिंतन के हम योग करते हैं तो लंबे समय तक नहीं चलता। हाँ, अगर लंबे समय से ज्ञान मनन चिंतन करने की आदत पड़ी है तो एक ही संकल्प में फिर घंटों बिताए जा सकते हैं। अगर मनन चिंतन करने की आदत नहीं है तो योग का रस नहीं आएगा, योग का सुख नहीं मिलेगा। जो बदलाव योग में, जो एक हमारे में एक करंट दौड़ना चाहिए, एक परिवर्तन स्वयं में महसूस होना चाहिए, वो शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं होगी अगर बिना चिंतन के योग है। तो मुरली मनन चिंतन का स्रोत है, एक मनन का खजाना है वो। बताया ना चिंतन कैसे शुरू करना है, खाली सोचना शुरू कर दो मुरली में क्या था, चिंतन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा अपने आप, रुकना नहीं है उस चिंतन को, और बढ़ाओ। आज का नहीं याद आता कल का याद करो, कल का याद नहीं आता परसों का याद करो, अव्यक्त वाणी का याद करो, या खाली यही याद करो मुझे ज्ञान के कौन कौन से बिंदु याद हैं। तो चिंतन शैली ये दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में समाहित होती जानी चाहिए। तो मुरली एक मनन चिंतन का अहम स्रोत है। दूसरा मुरली अंडरस्टैंडिंग, स्वयं को समझने का प्रयास है, वो स्वयं की समझ आती है। अर्थात व्यवहारिकता हमारी कैसी होनी चाहिए, कौन से समय किस व्यक्ति के आगे किस परिस्थिति में क्या बोलना चाहिए, ये मुरली हमको सिखाती है। अगर ये हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, अर्थात हम मुरली से कोसों दूर हैं, और मुरली से कोसों दूर है अर्थात भगवान की कृपा दृष्टि से भी स्वयं दूर हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग समझ अभी विकसित नहीं हो रही है, अर्थात हम ऊपर ऊपर में तैर रहे हैं। मुरली तो एक सागर की तरह है, जो बाबा कहते अंदर में जाने से क्या मिलेगा, रतन, और रतन मिलने के तो क्या होता है, नशा होता है, खुशी होती है। आज की मुरली में था ना नशे की बात, कौन से बच्चों को नशा रहता है, जो देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं उन्हें नशा रहता है। कौन सा नशा रहता है, कि हम ब्रह्मांड के मालिक बनेंगे, हम बाबा के बच्चे हैं। तो मुरली की डेप्थ में जाते हैं तो अंडरस्टैंडिंग आती है, समझ आती है स्वयं के प्रति, हमें स्वयं के रियलाइजेशन महसूसता कराती है वो, हु एम आई। वो वास्तव में एक आत्मा का कोर्स तो हम कर लेते हैं, बाकी तो सारा मुरली से हमको पता चलता है। बाबा कहते तुम हो राज ऋषि, अब ये कोर्स में थोड़ा बताते हैं, तुम हो स्वदर्शन चक्करधारी विश्व कल्याणकारी, ये कोर्स में थोड़ा बताते हैं, ये तो सारा मुरली के अंदर ही एंट्री होने से पता चलता है। तो हमारी जो सारी संस्कृति जो आत्मा के अंदर छिपी हुई है, वास्तविकता है वो मुरली की डेप्थ में जाने से उसकी रियलाइजेशन, उसकी महसूसता होती है। तो महसूसता की शक्ति को विकसित करती है, और स्वयं की कमी कमजोरियों से भी हमारा सामना होता है फिर, और उन कमी कमजोरियों का सामना करने की हमारे में ताकत आती है। और बार बार अगर हम फेल भी होते तो मुरली फिर से नया सेंटेंस उठ के ऊपर उठते हैं हम, तो महसूसता कराती है मुरली हमें स्वयं की, हम क्या थे और क्या बन गए। जो बाबा कहते तुम कौन थे, देवता थे, सूर्यवंशी थे, आज की मुरली में सूर्यवंशी विजय माला का दाना थे तुम। तो वो संस्कार स्वतः ही अपने आप आने लगेंगे जब हमको उसकी स्मृति आने लगेगी। जैसी स्मृति वैसी हमारी स्थिति बनती जाएगी, वो ही हमारे स्वरूप में आना शुरू हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से मुरली को इग्नोर नहीं करना है, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मुरली से प्यार बढ़ाना साधारण काम नहीं है। मुरली से प्यार बढ़ाना भगवान से प्यार बढ़ाने से भी ज़्यादा वाली मेहनत है। वो बाबा से प्यार करना आसान काम है, लेकिन बाबा की मुरली से प्यार करना वो मेहनत है, डिफिकल्टी है उसमें, क्योंकि बाबा तो सामने बैठे हैं, बाबा की महिमा भी गा देंगे, लेकिन जो बाबा मुरली में कहते हैं वो तो हमें हमारे जीवन से ही अवगत करा रहे हैं, हमारे जीवन का आईना है वो, हमारे ही अपने जन्मों का साक्षात्कार कराते हैं बाबा। तो मुरली क्या रियलाइजेशन कराती है हमको, और मुरली परमात्म प्यार का झरना है, एक MURLI, तो एलमन लव, मुरली परमात्म प्यार का झरना है। क्या होता है उससे, नीचे बैठने से, झरने के नीचे बैठने से जो आत्मा विकारों की अग्नि में जल गई है, खाक हो गई है, काली हो गई है, श्याम हो गई है, बाबा उसको शीतल बना देते हैं, सुंदर बना देते हैं, गोरा बना देते हैं, स्वच्छ बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं। तो मुरली एक झरने की तरह काम करती है। मुरली को अलग अलग तरीके से सुनना है, जो सामने मुरली सुनाने वाला बैठा हुआ है, जैसे वो परमात्म प्यार का झरना है, वो स्रोत है, उसके मुख से जो ज्ञान निकल रहा है, मुरली के महावाक्य, वो झरने के रूप में निकल रहे हैं, और वो झरना सीधा मुझ आत्मा को स्पर्श कर रहा है, ऊपर ऊपर से नहीं जा रहा है। नहीं तो केवल हम सुनेंगे, बॉडी कॉन्शियस होकर बैठकर सुनेंगे, और बॉडी कॉन्शियसनेस की जो स्थिति होती है, दूसरों के देह को भी देखने की आदत पड़ जाती है फिर, और दूसरों की देह को देखने की आदत, अर्थात दूसरों की कमी कमजोरियों भी हमारे में वो समा जाती हैं। तो सुनने की विधि को बदलना है। तो मुरली क्या है, एक झरना है, शीतल झरना है, जो एक तेज धूप में हमें शीतलता प्रदान करती है। संसार में क्या विकारों की आंधी है, सारा संसार वासनाओं की आंधी में है, वासनाओं की जकड़ में है। तो हमें स्वयं को देखना है, कभी हम भी तो नहीं उसी में है। तो एक झरने का रूप काम करती है, परमात्म प्यार का झरना निरंतर हमारे ऊपर बहते रहना चाहिए, अलग अलग उसके महसूसता करनी है। नेक्स्ट है, मुरली धारणा को मजबूत करती है। कोई भी धारणा हमारी अगर नीचे ऊपर होती है तो बाबा क्या कहते हैं, उमंग उत्साह से हमको फिर से उठाते हैं। बच्चे तुम्हें संकल्प पाएंगे, लेकिन तुम्हें गिरना नहीं है, कर्म में नहीं आना है। हार होती है फिर बाबा हमको उठा देते हैं, फिर प्रयास करो। तो उमंग उत्साह का वो केंद्र बिंदु है, स्रोत है वो। अगर हमारा उससे किनारा होगा तो हमारी प्रगति नहीं होगी, उत्थान नहीं होगा, जीवन में परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। वो जो एक रोचक स्वभाव बनना चाहिए या रोचक पुरुषार्थ करना चाहिए, एक रचनात्मक पुरुषार्थ का जो रास्ता प्रशस्त होना चाहिए, वो नहीं होगा। तो ये मुरली की 5 बातें हैं, MURLI। एम से मनन चिंतन, और मनन चिंतन कब करना है, केवल योग केस में नहीं करना है, योग केस में तो करना ही है, चलते फिरते भी किया जा सकता है, सेवा करते भी किया जा सकता है। लक्ष्य रखना, भले वो अगर मुरली याद नहीं तो 10 पॉइंट हमको मुरली की याद करने हैं, धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 सवेरे सवेरे मुरली सुनते सुनते वो लिख लेने चाहिए, फिर सारा दिन उसको रिवाइज करते रहो। तो मुरली क्या है, एक मनन चिंतन का स्रोत है वो। और दूसरा, मुरली अंडरस्टैंडिंग, समझ देती है हमको, हमारी समझ का विकास करती है वो। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, जज योर सेल्फ बाबा कहते हैं। तो स्वयं की समझ को विकसित करने का अहम माध्यम है वो, अहम स्रोत है अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, रियलाइजेशन, महसूसता आती है कि मैं कौन था और अब क्या बन गया हूँ, हमारा वो साक्षात्कार कराती है, स्वयं का ही साक्षात्कार। और परमात्म प्यार का झरना है, अल्फा लव, वो झरना निरंतर हमारे ऊपर बहते रहना चाहिए। और इम्बाइब धारणा, धारणाओं को मजबूत बनाने का एक माध्यम है। तो ये मुरली की पांच बातें थी। अब हम देखेंगे साधकों की संस्कृति, उसमें 12 बातें देखेंगे। हमारे जीवन में वो जो नेचुरल नेचर बन जानी चाहिए, अगर वो हमारे जीवन में नेचुरल नेचर नहीं बनी है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ निरंतर होते रहना चाहिए। इसलिए बाबा एक एक सेकंड का महत्व बताते हैं। तो सबसे पहली बात है ब्राह्मणों की या साधकों की संस्कृति की, सबसे पहली बात सोल कॉन्शियसनेस, देही अभिमानी स्थिति आज की मुरली में था, या फिर जो भी लास्ट मुरली चली है, कौन सी तारीख को चली है व्यक्तवाणी, 17 फरवरी को चली ना अभी। हाँ, तो बाबा ने एक मुख्य अभ्यास यही बताया, मुख्य प्रैक्टिस जो हमको निरंतर करते रहना चाहिए, क्या, आत्मा देखने का, और ये हमारा फाउंडेशन है। और इसमें बताया था कल विधि सहजी बताई थी क्लास में, बताई थी कल रात को, कौन सी विधि बताई थी, ये नहीं कि मैं ऊपर ही पहुंच गया हूँ, केवल संकल्प की बात है। यहाँ बैठे बैठे इससे भी फील करो कि शरीर अलग बैठा हुआ है, मैं आत्मा शरीर यहाँ कुर्सी पर सिंहासन पर बैठी हुई हूँ, ये सारा आंतरिक पुरुषार्थ है। ये ऐसा नहीं कि बॉडी से हम बिल्कुल अलग ही हो जाएंगे, उस स्थिति महसूस होगी, हमारे संकल्प इस बॉडी से चिपकेंगे नहीं, अर्थात हमारे संकल्प देह के प्रति नहीं चलेंगे, आत्मा के इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे, आत्मा की विशेषताएं, आत्मा की क्वालिटीज, उसके गुण, उनका चिंतन चलते चलते हम इस बॉडी से अपने आप डिटैच होने की अनुभूति करेंगे। जैसे मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ, एक संकल्प है, अगर हमको इस लंबे समय से इस संकल्प को हमने अपना एक अंग बना लिया है तो फिर उसकी अनुभूति सहज होने लगेगी, क्योंकि हमने आदत बना दी है। जैसे कोई भी अगर आदत बना दो और वो आदत पड़ गई तो बार बार ना चाहते भी हमारा ध्यान वहीं जाता है। किसी बच्चे को कोई ये काम नहीं करना है और उसको बार बार ध्यान उसका उधर ही जा रहा है, तो जितना मर्जी बोल दो आप, ध्यान तो उसका उधर ही जाएगा। ऐसे भी मन हमारा एक छोटे बच्चे की तरह है, तो मन को ये संकल्प देना है, कौन सा, मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ। इस संकल्प को बार बार रिवाइज करना है, स्मृति का जल देना है, बाबा कहते हैं जितना उस संकल्प को स्मृति का जल देंगे उतना वो शक्तिशाली होगा, उतना वो हरा भरा होगा। जैसे पेड़ को अगर लगा दिया हमने, बीज तो बो दिया, छोटा पौधा लगा दिया, अगर उसको पानी नहीं दिया तो सूख जाएगा वो। तो बाबा भी ऐसे हमें श्रेष्ठ संकल्पों के बीज हमारे मन रूपी धरनी पर सवेरे सवेरे बो देते हैं ऊपर, लेकिन हम उनको स्मृति का जल नहीं देते हैं, इसलिए वो पोषित नहीं होते हैं, वो वैसे के वैसे रह जाते हैं। फिर अगला दिन आता है, अगले दिन में बाबा फिर नए बीज बोते हैं, फिर सारा दिन ऐसे बीत जाता है, तो हमारा परिवर्तन होता नहीं, फिर जीवन में हरियाली आएगी नहीं, सूखा पड़ा रहेगा, अकाल पड़ा रहेगा, ब्राह्मण जीवन में भी फिर संकल्पों का अकाल रहेगा। तो इस मन रूपी धरनी पर जो भी हम संकल्प बोते हैं, उन संकल्पों को शक्तिशाली बनाने के लिए, उनको पावरफुल बनाने के लिए बार बार स्मृति का जल देना है, क्योंकि दिखाई थोड़ा नहीं दे रहा संकल्प क्या कर रहे हैं हम अंदर में, ये तो सारी अंदर की बात है, गुप्त बात है, गुप्त पुरुषार्थ है। तो क्या संकल्प करना है हमको सोल कॉन्शियस स्थिति के लिए, सोल कॉन्शियसनेस स्थिति के लिए, मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ, इस संकल्प को बार बार दोहराना है सारे दिन में। ऐसे ही अगला संकल्प, मैं आत्मा इस शरीर को लेकर चल रही हूँ, मैं आत्मा इन हाथों से भोजन कर रही हूँ, केवल संकल्प तो करना है, और ये संकल्प बार बार करने हैं, छोड़ने नहीं है। अगर ये संकल्प नहीं किए तो हमारा सारा ध्यान आत्मा की बजाय बॉडी की तरफ ही जाएगा, फिर पूरा दिन बॉडी कॉन्शियसनेस की स्थिति रहेगी, स्वयं का भी देह हमें आकर्षित करेगा और दूसरों के देह भी आकर्षित करते रहेंगे। और सबसे बड़ी वादा तो यही है, या तो फिर दूसरों का देह अगर देख रहे हैं तो बाबा क्या कहते हैं, फरिश्ता रूप में देखो, लेकिन सबसे पावरफुल जो स्थिति है वो ये है आत्म अभिमानी स्थिति। सारे विकारों की उत्पत्ति देह अभिमान से होती है, इसलिए बाबा बार बार कहते हैं देह अभिमान सबसे बड़ा भूत है, वो सबसे बड़ा विकार है। आज भी भूत की बात थी ना, कौन सा भूत है आज? क्रोध का भूत। अगर किसी में क्रोध आए तो क्या समझना चाहिए? हाँ समझना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोला तो खतरा है, तो भूत सीधा हमारे में प्रवेश कर जाएगा। वो भूत तो एकदम ताक में बैठा होता है, कब थोड़ी सी खिड़की खुले, कब थोड़ा सा रास्ता मिले तो मैं अंदर एंटर कर जाऊँ। तो सेल्फ सोल कॉन्शियसनेस अर्थात देही अभिमानी स्थिति बनाने की स्वयं की योजना प्लान करनी, स्वयं के चिंतन को बढ़ाना है। दूसरे के चिंतन के बल पर हम कब तक चलते रहेंगे? स्वयं के चिंतन को बढ़ाओ, स्वयं का मार्ग खुद ही प्रशस्त करना है, खुद ही निर्माण करना है, हर एक इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करना है। एक है सामूहिक पुरुषार्थ, भट्टियाँ होती हैं बड़े बड़े स्तर पर होती हैं, माताओं की भट्टियाँ, भाइयों की भट्टियाँ, कुमारों की भट्टियाँ, कुमारियों की भट्टियाँ, ये तो होती हैं, लेकिन इंडिविजुअल पुरुषार्थ, एक व्यक्तिगत पुरुषार्थ, और वो पावरफुल होता है, क्योंकि जो व्यक्तिगत पुरुषार्थ करते हैं वो हमारी स्वयं की प्लानिंग होती है, स्वयं की व्यवस्थाओं को देखते हुए, स्वयं की दिनचर्या को देखते हुए, साथियों को देखते हुए, परिवार को देखते हुए, वो प्लानिंग खुद निर्माण करनी है। क्योंकि सुनाने वाला जो सुनाता है वो अपनी जीवन शैली के अनुसार सुनाता है, उसको सामने वाले की जीवन शैली, परिस्थितियाँ, समस्याएँ कैसे हैं, उसके घर के मेंबर कैसे हैं, उसके घर के संबंध कैसे हैं, पता थोड़ा नहीं है, सबका अपना अपना है। तो हमें व्यक्तिगत पुरुषार्थ के लिए स्वयं ही प्लानिंग करनी है, स्वयं ही एक चार्ट क्रिएट करना है। तो पहला आत्म अभिमानी स्थिति में पारंगत हो जाना है। दूसरा है सेल्फ सिक्योरिटी, स्वयं की सुरक्षा। किस किस चीज़ से सुरक्षा करनी है बताइए आप, अभी कौन सी चीज़ से स्वयं की सुरक्षा करनी है? बुरी आदतों से स्वयं की सुरक्षा करनी है, और पर चिंतन से, व्यर्थ संकल्पों से। 17 तरीके की मुरली में था ना बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ सुनने से, संग दोष से, देह अभिमान से, पुराने संस्कारों से। तो अब ये सुरक्षा करनी है तो हमको पता, लेकिन सुरक्षा करनी कैसे है? मेन मुख्य बात तो वो है, करनी कैसे है? तो सुरक्षा दीवार, हमको नए संकल्पों की सुरक्षा दीवार मजबूत करनी पड़ेगी, नए नए संकल्प और चिंतन इसको बढ़ाना है। क्योंकि हमारी जो आदतें हैं, जो खराब आदतें हैं, उनको अच्छी आदतों में बदलने के लिए टाइम लगता है, इसलिए बताया कि धैर्यता बहुत चाहिए इसमें। तो अच्छी आदतें कौन सी निर्माण करनी है? जैसे एक अच्छा स्टूडेंट होता है तो अच्छे स्टूडेंट को अपने लक्ष्य के प्रति पूरा ध्यान रहता है। तो हमें भी अगर स्वयं की सुरक्षा करनी है तो अच्छी आदत अर्थात हमें अपने लक्ष्य के प्रति स्वयं सजग रहना है, सतत जागरूकता चाहिए उसमें। देखना है, जैसे बताया कि इसी शरीर में देवता ही शरीर का अनुभव करना है, ठीक है। अब इसका चिंतन करो कि देवताओं का शरीर कैसा है। देवताएं हमेशा आत्मवानी स्थिति में रहते हैं, वो अब हमको अभी अनुभव करना है। देवताओं की दृष्टि कैसी होती है? अलौकिक दृष्टि है वो तो। देवताओं का भोजन कैसा होता है? देवताओं का सुनना, देवताओं का बैठना, चलना, खाना पीना कैसा होता है? ऐसे लिखो देवताओं के निबंध। तो ये एक सुरक्षा दीवार तैयार हो जाएगी हमें पुराने संस्कारों से, पुराने संकल्पों से बचाव के लिए। स्वयं की सिक्योरिटी स्वयं ही करनी पड़ेगी, दूसरा हमारी कोई सिक्योरिटी करने वाले नहीं। बाबा ने भी हमको रास्ता बता दिया, बाबा तो बता देते कि तुम मेरी छत्रछाया में चलो, लेकिन याद किसको करना है? याद तो हम खुद ही करेंगे ना, संकल्प तो खुद को करना पड़ेगा ना। बाबा का काम है बताना, करना तो हमारा काम ही है। टीचर का काम है बताना, करना तो स्टूडेंट का काम ही होता है। बाकी ऐसा नहीं कि बाबा सामने आएगा, हमको दृष्टि देता रहेगा और हमारी सुरक्षा होती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसने जो बताना था वो बता दिया, करना खुद को ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बाबा आ जाओ और बाबा आ जाएंगे, लेकिन हमने पहले कुछ किया ही नहीं और बाबा आ जाओ, क्यों आएगा बाबा? इतने सालों से जो बाबा ने कहा हुआ है वो तो हमने किया ही नहीं, और लास्ट में जब पूरे संसार के बुरी बातों में लिप्त रहे और अंत में बाबा को पुकार रहे हैं, इतना समय तो हमने उसका ध्यान नहीं रखा, इतना समय तो हमने उसके समय का कदर नहीं किया, उसकी वाणी का कदर नहीं किया, उसकी सेवाओं का कदर नहीं किया, उसके संग का कदर नहीं किया, और अंत में पुकार रहे हैं। पुकारने से आएगा तो जरूर, लेकिन सहायता भी उसी अनुरूप में मिलेगी। जितना आज के मूल्य में था ना, तुम भगवान के मददगार बनते हो, तो हम इस समय कितना उसके मददगार बन रहे हैं, उसी अनुपात में हमको अंत में मदद की अनुभूति होगी। तो सेल्फ सिक्योरिटी, दूसरी बात है स्वयं की सुरक्षा खुद ही खुद करनी है, उसकी प्लानिंग करनी है कैसे हमारी स्वयं की सुरक्षा हो। तीसरा है स्पिरिचुअल स्पीच, हमारी जो वाणी है इसमें रूहानियत होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, संसार की तरह शब्द नहीं होनी चाहिए, किसी के दिल को भेदने वाले शब्द नहीं होने चाहिए। कोई बेचारा पहले गिर रहा है और हम उसको और ही डरा दें। बाबा कहते हैं तुम्हारा काम है गिरते हो को उठाना, ना कि गिरे हो को गिराना। पहले से कोई कमज़ोर है और ऊपर से आके कह रहा है तुम दुबला पतला है, तुम कमज़ोर हो गया है, और ही उसको गिरा रहे हैं, क्योंकि सबकी स्थिति एक जैसी नहीं है। माँ बच्चे को कहती है कभी तुम तो है ही नलायक, भले बच्चा कैसा भी हो, माँ क्या कहेगी, मेरा राजा बच्चा है। तो भगवान भी हमारी माता है, तो भगवान की वाणी कैसी है, उसकी स्पीच कैसी है, तो हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। तो जो बाप की वाणी है वही तो बच्चों की वाणी होनी चाहिए ना। बाप की पहचान कैसे होगी, जो बच्चे उसकी वाणी बोलेंगे तभी तो उसकी पहचान होगी, नहीं तो कौन कहेगा भगवान के बच्चे हैं। तो स्पिरिचुअल स्पीच, हमारी वाणी में स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, उसमें रूहानियत होनी चाहिए, कल्याण की भावना समाई होनी चाहिए, मधुरता मिठास होनी चाहिए, दूसरों को उमंग सा दिलाने की होनी चाहिए, आगे बढ़ाने की होनी चाहिए, प्रोत्साहन देने वाली होनी चाहिए, और वाणी कम होनी चाहिए, संसारिक वाणी नहीं। संसारिक वाणी बोल बोल के तो ये हाल हुआ हम सबका, देवताई वाणी होनी चाहिए। तो तीसरी बात है स्पिरिचुअल स्पीच, अर्थात हमारी वाणी आध्यात्मिकता से भरपूर हो एकदम। चौथी बात है साइलेंस, लंबे समय से साइलेंस का अभ्यास करना है, जहां हमको बोलने की जरूरत नहीं है वहां नहीं बोलना है। वैसे सवेरे कई बार योग में देते हैं, योग के बाद ही शुरू कर देते हैं बोलना, यहाँ आकर क्या बोलने की जरूरत है, मधुबन में इतनी जरूरत नहीं है, घर में तो बहुत बोल के देख लिया है, यहाँ की एनर्जी जमा करो, साइलेंस में चले जाओ, खो जाओ, मन को भी थोड़ा आराम दो। नहीं तो जो अर्थ बोलना ही सिद्ध करता है कि मन को हमने बहुत बिजी रखा हुआ है, मन को ऐसे वैसे संकल्पों से भर के रखा हुआ है, मन बेचारों ने संकल्पों में परेशान में है, उलझन में है, और हम और ही उलझा रहे हैं। बाबा कहते जब भी मौका मिले मेरे पास आ जाओ, अपने मन को साइलेंस में ले जाओ। साइलेंस अर्थात ये नहीं कि सोचना नहीं है कुछ, वो संकल्प सोचने हैं जिसमें भगवान की प्यार का अनुभव हो, भगवान के प्रति हमारे अंदर से एकदम कृतज्ञता के भाव निकले, उसके प्रति हमारी अंदर की भावनाएं प्रदर्शित हों कि बाबा आपने हमको क्या से क्या बना दिया, ओह स्वयं भगवान हमको पढ़ाने आया है, हम उसके सन्मुख बैठे हैं, उसने हमारी उंगली पकड़ी है, वो हमारी छत्रछाया बनकर हमारी पालना कर रहा है, उसने हमारे जीवन के सारे विकार हर लिए, स्वयं पूरी सृष्टि का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक हमारे साथ में है, हमारे अंग संग रहता है। अच्छे अच्छे संकल्प करो, ये साइलेंस में जाने से होंगे। ज़्यादा बोलते रहेंगे तो नहीं होंगे। एक है मुख का बोलना, दूसरा मन से भी अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं। बताते हैं ना क्लास में, आजकल व्यर्थ सोचने की आदत बहुत बढ़ती जा रही है, अधिक सोचने की आदत। अगर सोचना ही है तो ये वाली चीज़ें सोचो, साइलेंस में बैठ के सोचो, साइलेंस की दुनिया में चले जाओ, वो साइलेंस कितना, उस साइलेंस का अनुभव करो कैसा है, वो एकदम सन्नाटा है, कोई आवाज़ नहीं है। संकल्प, ये संकल्प करते करते उसमें हम खो जाएंगे, उसकी महसूसता होगी, आत्मा को थोड़ा आराम मिलेगा उन संकल्पों से। जैसे खाली पेट को थोड़ा सा भोजन करने से कितनी राहत मिली है, मिलती है, ऐसे ही आत्मा का पेट भी शुद्ध संकल्पों से भरा रहना चाहिए। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ऐसे ही आत्मा योग में भी अनुभव तब करेगी जब उसका पेट शुद्ध संकल्पों से भरा हुआ होगा। शुद्ध संकल्प ही नहीं है तो योग से फिर बाद में खाली खाली अनुभव होता है और उसका प्रमाण कि बाद में हम बोलना शुरू कर देते हैं। अगर अच्छा योग लग रहा है तो बाद में बोलने को मन ही नहीं करता, सभी अनुभव ही हैं। तो क्या करना है? साइलेंस में, जितना हो सके साइलेंस में चले जाने का। नेक्स्ट है साक्षी दृष्टा स्थिति, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सबके संस्कार बाहर निकलेंगे और ये अंतिम पेपर है संस्कारों का पेपर, ये सबके बाहर निकलेंगे, स्वयं के भी निकलेंगे दूसरों के भी निकलेंगे और दूसरे के संस्कारों को हम बदल नहीं सकते। हम में स्वयं के संस्कारों को बदलने के लिए कितनी मेहनत लगती है, लेकिन दूसरों से अपेक्षा रखते हैं दूसरा ऐसा हो जाए, स्वयं के बदलने में कितनी डिफिकल्टी है। तो साक्षी होकर देखना है, जैसे भगवान ऊपर बाबा ऊपर बैठकर साक्षी होकर पूरे संसार को देख रहा है, उसको पता है हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, किसी का इसमें कोई दोष नहीं है। जैसी जिसकी कैपेसिटी है, जैसी जिसकी आदतें हैं, जैसे जिसने संस्कार हैं वो ही सामने दिखाई देंगे। केवल हम शुभ भावना शुभकामना रख सकते हैं, बाकी किसी को बदलने के लिए हम अगर मुख से बोलें नहीं बदलेगा। अपने जीवन से हम बदल सकते हैं अपने जीवन, इसलिए बताया सेल्फ सिक्योरिटी, स्वयं को बदलने का ही सारा पुरुषार्थ करना है। स्वयं को बदल दिया, दूसरों के प्रति हमारे मन में शुभ संकल्प तभी उपजेंगे, तभी पैदा होंगे जब हमने स्वयं को बदलने का संकल्प रखा है, बदलने की थोड़ी स्वयं के प्रति नज़र रखी है, नहीं तो दूसरों के प्रति हमारा वो संकल्प काम ही नहीं करेंगे वो। तो साक्षी दृष्टा, और ये बहुत अच्छी स्थिति है, इसमें कोई कुछ भी उतार दे साक्षी होकर देखो, कहीं नुकसान भी दिखाई देगा कभी फायदा भी दिखाई देगा, लेकिन हर चीज़ से उपराम। और ये संसार की छोटी छोटी जब स्थिति हमारी बहुत उच्च कोटि की स्थिति है, साक्षी दृष्टा के सिंहासन पर जब हम बैठे हैं तो संसार बाबा क्या कहते हैं, ऊंची स्थिति पर चले जाओ तो नीचे वाली चीज़ें क्या देखती हैं, छोटी छोटी दिखती हैं। तो ये सारी चीज़ें सारी परिस्थितियाँ सारे विघ्न सबके संस्कार छोटे छोटे दिखेंगे, ये तो चींटी की तरह है, वो भी मरी हुई चींटी की तरह है। हमारी स्थिति की कीमत अनमोल है, उसकी कोई मोल नहीं है। तो दूसरों की स्थिति के पीछे अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है, क्योंकि संस्कार बाहर निकलने का अभी अंतिम समय चल रहा है, देख रहे हैं हम संसार की हालत भी। तो साक्षी दृष्टा के सिंहासन पर बैठे रहने की प्रैक्टिस निरंतर चलती रहनी चाहिए। नेक्स्ट है सतत साधना, निरंतर साधना। साधना जो है हमारी विशेषताओं को निखारती है, हमारी जो बुद्धि की ब्लॉकेज हो गई है चिंतन के नए नए रास्ते खुलेंगे, जो हमारी हमने अब तक जो भी पुरुषार्थ किया है जितने भी ऊर्जा का संरक्षण किया है वो चिंतन हमारी ऊर्जा को सुरक्षा प्रदान करेगा, संरक्षित करके रखेगा। इसलिए सतत साधना होती रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम बाबा से जुड़ेंगे तो जो उसके संस्कार हैं, जो उसके वाइब्रेशन हैं, जो उसकी हमारे प्रति इतनी ऊंची दृष्टिकोण है वो हमें फीलिंग होगी, महसूस होगा। नहीं तो संसार के आकर्षण छोड़ते नहीं है, साधना फिर साधनों की तरफ चली जाती है, और साधन जबरदस्त आकर्षण है, और सारे साधन एक ही साधन में सिमट गए, और वो है मोबाइल। मोबाइल जैसे एक परिवार का प्रिय मेंबर हो गया है, परिवार के मेंबर को चोट लग जाए तो चलेगा, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन नहीं टूटनी चाहिए। स्क्रीन टूट जाती है तो दिल चोट कहाँ लगती है, दिल में। ऐसा हो गया मोबाइल से एडिक्शन हमारा, मोबाइल से कितना प्यार हो गया है। तो सतत साधना चलती रहनी चाहिए। नेक्स्ट है सत्संग, अपने संग की भी संभाल रखनी है। सारे दिन में हमारा संग कैसा है, जैसा संग वैसा रंग, एक है स्थूल संघ, दूसरा है सूक्ष्म संघ। स्थूल में तो हम ठीक है एक दो के आसपास रहते हैं, लेकिन भीड़ में भी हमें अपने संघ को नहीं छोड़ना है, जो सत्य का संघ है, जो सुप्रीम सत्ता का संघ है, उसका संघ नहीं छोड़ना है। उसके संघ का रंग हमारे ऊपर निरंतर चढ़ते रहना चाहिए। और उसके रंग कौन से हैं, उस सत्य के कौन से रंग है? सत्यम शिवम सुंदरम, पवित्रता के, प्योरिटी का रंग है, शांति का रंग है, आनंद, प्रेम, सुख, कितने सारे खजाने हैं। तो उसकी उसके साथ हमको होली मनाते रहना। अभी होली का पर्व आएगा ना, तो सच्ची सच्ची होली मनानी है। सत्य के संग में हमको उसके रंगों में रंग जाना है। सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे, है ना। संसार में भी ये शिक्षाएं मिलती रही हैं, लेकिन वास्तविकता से तो हम अभी परिचित हो रहे हैं कि उनका वास्तविक अर्थ क्या होता था। पढ़ाई तो सबने पढ़ी है, लेकिन प्रैक्टिकल में अनुभूति अब कम कर रहे हैं। तो ब्राह्मण जीवन में सत्संग की बहुत बड़ी, इस साधकों की संस्कृति में बड़ी भूमिका है। साधुओं का संग साधुओं के साथ ही होता है। संसार में जो साधु होते हैं वो पब्लिक में ज़्यादा नहीं जाते, अगर जाते भी तो केवल अपना प्रवचन करते हैं, और संग साधुओं का ही रहता है। तो बाबा कहते हैं तुम ही बड़े से बड़े साधक हो, तुम हो सच्चे सच्चे राजऋषि। और राजऋषि की क्या निशानियाँ होती हैं, तो हमारे भी वही निशानियाँ हमारे से दिखाई देनी चाहिए। राजऋषि अर्थात पवित्र, पावन, निर्विकारी, प्योर, चाहे वो संकल्प, चाहे बोल, चाहे वो कर्म। तो सत्संग। नेक्स्ट है सकाश, सकाश देने की सेवा निरंतर चलती रहनी चाहिए। जब भी हमको मौका मिले तो सकाश जरूर देना है, क्योंकि संसार में वर्तमान समय इसकी बहुत आवश्यकता है, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। आज का स्लोगन था ना, क्या स्लोगन था आज का? हाँ, एक बाबा का ही संकल्प हो, बाबा को दिल में बसा लो, तो वही मनसा, उनकी मनसा शक्तिशाली होगी। तो मनसा शक्तिशाली तो एक सत्य के संग में रहना है, तो हम सकाश दे सकते हैं। नेक्स्ट है साधकों की संस्कृति में वैराग्य। संसार के जितने भी आकर्षण हैं, सबसे हम अच्छी तरह से परिचित हैं, कितना उसका हमको सुख मिला, उस सुख में क्या समाया हुआ है? दुख ही दुख समाया हुआ है। तो उसका भी चिंतन करना है। ऐसा नहीं है कि वो हमने सब कुछ छोड़ दिया है। संसार में तो रहना है, बाबा कहते हैं गर्गस्थ में रहना है, लेकिन न्यारे प्यारे होके रहना है। वास्तविकता को समझना है कि संसार के दुखों में क्या सुख समाया हुआ है। संन्यासी कहते हैं ना, सुख कैसा है? वो काग विष्ठा समान है। तो वास्तव में असली सच्चा संन्यास बाबा कहते हो तुम्हारा है, तुम हो सच्चे सच्चे संन्यासी। तो वैराग्य हमारा दिन प्रतिदिन धधकता जाना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और ज्ञान में जितना डुबा के रखेंगे स्वयं को, वैराग्य हमारा निरंतर बढ़ता रहेगा। अगर संसार की चीज़ों के प्रति हमारा आकर्षण होगा तो वैराग्य हमारा खंडित होता रहेगा। और वैराग्य की परिभाषा क्या है? ये संसार असार है और देह मिट्टी है, ये है वैराग्य की परिभाषा। संसार असार और देह मिट्टी। नेक्स्ट है संबंधों में समरसता। ऐसा नहीं है ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी, ये माता ठीक है, वो भाई ठीक है, नहीं, सब अच्छे हैं, सभी माना सभी अच्छे हैं, भले वो कोई भी है, भले वो कोई गांव की माता है या कोई मिनिस्टर है, या कोई आज नया नया बाबा का बच्चा बना है या कोई पुराना बच्चा है, सब अच्छे हैं माना सब अच्छे हैं। इसलिए बीच में बताया ना, साक्षी दृष्टा के सिंहासन पर बैठे रहो तो परिस्थितियाँ नीचे दब जाएंगी, किसी के अब गुण नहीं दिखाई देंगे। गुण दिखाई देने का हमको एक नया रास्ता खुल जाएगा। तो संबंधों में समरसता, क्योंकि सारे दिन में संबंधों में तो आना पड़ता है। ऐसा नहीं है घर में रहते हो हम संबंधों से उनसे किनारा कर लेंगे, बातचीत तो करनी पड़ेगी। और ये ज्ञान बिल्कुल नया नया ज्ञान है, एकदम सभी को हजम नहीं होगा ये। इसको पचाने के लिए हाजमा भी बहुत शक्तिशाली चाहिए, धारणाएं भी वैसी चाहिए, है ना। भले मक्खन हमारे सामने रख दिया, लेकिन हाजमा नहीं है उसको हजम करने का, लिया उतना हमारा है ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो मक्खन भी वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, बीमारी का साधन बन जाएगा। तो इस ज्ञान को घर में कैसे सुनाना ये भी हमको आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज्ञान ही उनके लिए विष बन जाए, जहर बन जाए, और कई दफ़ा होता भी ऐसे ही है। कौन से पात्र को कैसे ज्ञान देना, बाबा कहते नबज परखो उसकी, नहीं तो सीधा पकड़ के हम उसको बाबा बाबा कहते रहे, वो बोलेगा मुझे नहीं चाहिए तेरा बाबा। अपने बाबा को अपने पास ही रखो। तो नबज देख के कहाँ कैसे इसको यूज़ करना है वो हमें स्वयं देखना है, क्योंकि संबंध तो हमारे आदिकाल से अंत तक रहेंगे, संबंधों में तो आना ही आना है, और इसकी कला अभी हमको सीखनी है, संबंधों को निभाने की कला। कितना बड़ा परिवार होता है, सबके साथ मिलजुल कर चलना, सबका दिल जीतना, और वो कैसे होगा, घर में सबको सहयोग देना। ऐसा नहीं है हमारी धारणाएं ऐसी हैं तो हम उनके बिल्कुल किनारा कर दें, इग्नोर कर दें, नहीं, उनके साथ चलना इसकी कला सीखनी है। सामने वाले के दिल को पढ़ना है, उनके मन के कैसे भाव हैं, उनको कैसे हम अपने स्नेह में या बाबा का स्नेह कैसे दें उनको, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली, उनके कौन से कर्मों में हम सहयोगी बन सकते हैं। ऐसा नहीं हर कर्म में सहयोगी बनना है, कई तो ऐसे कर्म हैं जिसमें हम उनके सहयोगी बन सकते हैं, तो उनकी मनोदशा को समझना है। तो संबंधों में समरसता। नेक्स्ट है संपत्ति, ज्ञान की संपत्ति अर्जित करनी है, अर्थात बीच में बताया ना, ज्ञान के साथ सारा दिन खेलते रहना है, खेलते रहना है, रत्न है ये, एक एक रत्न बाबा कहते बहुत कीमती है, लाखों रुपए का एक रत्न है। तो देखना है सारे दिन में हमने कितने रत्न एकत्रित किए हैं, तो कितनी बातें हो गई, 11 होगी, 12 होगी, 11 होगी। अब 12वीं आप बताओ कौन सी होनी चाहिए, खुशी, खुशी नहीं छोड़नी है कभी भी। आज बताया ना मुरली में, तुम बच्चों को ब्राह्मण देवता कैसे रहते हैं, खुश मिजाज, तो देवताओं से उत्तम हमारा जीवन है, तो कैसे रहना, हमेशा खुश, पुरुषार्थ नहीं हो तो भी खुश रहने का, पुरुषार्थ करके तो कोई भी खुश रह सकता है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करके खुश रहना ये कला सब में नहीं होती, कोई कोई में होती है ये, तो कितनी बड़ी बात है ये भी, पुरुषार्थ नहीं होता तब भी खुश रहने का। 17 तारीख की मुरली में बाबा था ना, बाबा ने कहा सबको दुआएं देते रहो, इसमें सारे खजाने आ जाएंगे, ज्ञान योग धारणा सेवा सब आ जाएगा, तो सदा खुश रहो इसमें सारा कुछ आ जाएगा। तो सदा खुश कैसे रहना है, जब ये 11 बातें करेंगे तो खुशी आएगी, और ये नहीं भी होगी तो भी खुश रहने का। तो कौन कौन सी 11 बातें, सबसे पहली बात, 12 बातें हुई, सबसे पहली बात सोल कॉन्शियसनेस, आत्म अवमान्य की निरंतर प्रैक्टिस करें, और उसके बताए नए नए संकल्प करने, मैं आत्मा इन आँखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा हाथों से कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा अपने शरीर को लेकर चल रही हूँ, है ना, अलग अलग संकल्प करने। दूसरा सेल्फ सिक्योरिटी, स्वयं की सुरक्षा कैसे करनी है, ये स्वयं के ही एक पुरुषार्थ न का प्लान बनाना है। तीसरा, हाँ जी, स्पिरिचुअल स्पीच। चौथा साइलेंस, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, वो सब देखना है। पाँचवा साक्षी दृष्टा। छठा सतत साधना। सातवा सत्य का संग। आठवां साकाश। नौवां वैराग्य। दसवां संबंधों में समरसता। ग्यारहवां ज्ञान की संपत्ति। और बारहवां खुशी। और मुरली की पांच बातें, मनन चिंतन, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन, लव, और पांचवा इम्बाइव धारणा करने के बाद। तो ऐसे चिंतन करते रहना है, ठीक है। ओम शांति।